ये भी मक्किया है, मक्के में नाजिल हुई ये सूरत। इसमें बहनों सुभान अल्लाह, सूरत रोम, रोम तो मालूम है ना, कंट्री का नाम भी है ना, कंट्री का नाम, वो कंट्री के नाम से सूरत है। तो इसका मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा खाका पहले आपको बताऊं कि शान नुज़ूल क्या है इसका, ये कब नाजिल हुई। देखिए मैंने जब अहद रिसालत में, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, उस वक्त दो बड़ी ताकतें थी, एक ईरान और एक रोम, एक ईरान और एक रोम। तो ईरान और रोम दो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी उस वक्त, उस वक्त की दुनिया की बड़ी ताकतें थी। तो ईरान जो था वो तो आतिश परस्त थे, यानी उसकी पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। और दूसरी कौम जो रोम की थी, वो अहले रोम क्या थे, ईसाई। और ईरानियों के साथ ये मक्के के मुशरिकीन की बहुत जमती थी और बहुत हमदर्दियां उनकी थी, क्यों, ये भी मुशरिक वो भी मुशरिक। और जब मुसलमान की हमदर्दियां किसके साथ थी, अहले रोम के साथ थी। और रोम चूंकि ईसाई थे, ईसाई के साथ क्यों थी, क्योंकि ईसाई भी मुसलमानों की तरह अहले किताब थे, वही पर, रिसालत पर, आखिरत पर यकीन रखते थे वो लोग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयासत के चंद साल बाद ये हुआ कि फारस की हुकूमत ईसाई हुकूमत पर गालिब आ गई, यानी ईरान की हुकूमत ईसाई हुकूमत पर गालिब आ गई, यानी रोम को वो लोग हमला करके कब्जा कर लिए। कब्जा कर लिए करते ही जो है ना, मुशरिक बहुत खुश हो गए, देखे कैसा जो है ना, मतलब यानी ईसाइयों को अहले किताब कैसे जो है ना अल्लाह ने शिकस्त दे दी, ऐसे बहुत खुश हो रहे थे मुशरिकीन जब ईरान रोम को फतह कर लिया था। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, गुलिबत रोम, हाँ रोम मगलूब हो गया। और फी अदनल अर्जी वहुम, इसके बाद अल्लाह ताला बताए कि हाँ इससे यानी रोम तो मगलूब हो गया, लेकिन अनखरीब फिर से वो गालिब हो जाएगा, फी बिद असनीन, इन चंद सालों में फिर से वो गालिब हो जाएगा। तो ये एक निशानी थी, एक आयत जो अल्लाह ताला नाजिल करे उस वक्त मक्के में। तो लोग मतलब जिसको तो मानना नहीं था, यकीन नहीं करना था, वो मुशरिकीन कुफार हंसे, हाँ देखो इतनी जबरदस्त तरीके से शिकस्त हुई, ये लोग हार गए रोम वाले, और कुरान कह रहा है कि चंद साल में ही ये लोग गालिब आ जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता। तो चूंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा यानी सुभान अल्लाह अल्लाह की बातों को फौरी मानने वाले थे, जैसे पिछले भी हम पढ़े ना इसरा जब वाकया पेश आया, तो कैसे उन्होंने पहले उठ के बोल दिए थे कि हाँ मेराज का वाकया जो हुआ वो बिल्कुल हक है, अल्लाह के नबी ने जो कहा वो सच है, कैसे कहते थे ना। यहाँ पर भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो उठ के ठहरे और बोले कि जामे तिरमिज़ी की हदीस है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि क्या फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अबू जहल से शर्त बांधी कि रूमी चंद साल में, पांच साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिज़ईन का जो माना है वो जो लव 9 साल तक का अरसा है अबू बकर, तुमने बहुत कम मुद्दत रखी, जाओ और अपनी शर्त में चेंजेस करा लो। फिर जाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं कि अबू जहल के ये बिज़ई सिनिन जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उससे मुराद है 9 साल तक, तो विद इन 9 ईयर्स फिर से रोम गालिब हो जाएगा। तो उन्हें बोलता अबू जहल के सवाल ही नहीं है, इतनी शिकस्त मिली 8-9 साल में फिर से लोग आ जाते, सवाल ही नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते कि मैं शर्त बांध रहा हूँ तुमसे। तो वो बोलता कि ठीक है 9 साल पर भी मैं आमदा हूँ, 9 साल तक भी नहीं हो सकता, ये बोलता। तो हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल यानी अंदरून 9 साल यानी 7 ईयर्स में ही जो है ना दोबारा फिर से रोम फतह हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ईरानियों को वहां से मार भगाया गया था। तो बहनों आपको और एक बात का इत्तला दे दूं कि जब रोम फतह हुआ था तो उस वक्त सेम डेज में इधर जंगे बदर हुई थी और मुसलमानों को फतह हुई, तो उनको डबल खुशखबरियां मिली, डबल खुशखबरियां मिली थी सेम सेम, यानी इधर जो डबल के ट्रिपल कहूं मैं, क्योंकि इधर फतह बदर में फतह हुई, फिर इधर रोम जो इन लोगों को ठंडक पड़ी कि चलो भाई अहले किताब पाते हुए, फिर और एक बात ये हुई थी कि कुरान सच साबित हुआ था, कुरान में जो अल्लाह ने कहा ना कि अनकरीब ये फिर से गालिब हो जाएंगे रोम, अहले रोम, तो कुरान की सदाकत यहाँ पर साबित हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरे कैफ ये 7 इब्तदाई 7 आयात में अल्लाह ताला ने फतह की खुशखबरियां देकर आगे सूरा खत्म तक तौहीद, शिर्क और क़यामत और दीगर मुतफरिक आयात हैं, जिसको इंशाल्लाह हम इख्तिसार से जितना हो सका मुमकिन करेंगे इंशाल्लाह। आइए देखते हैं, पहले हम ये तो थोड़ा सा मुतालिया, थोड़ा सा मैं तर्जमा पढ़ूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसा अल्लाह ने इरशाद फरमाया। रूमी मगलूब हो गए, अलिफ लाम मीम, غلبت الروم, روم سورہ شروع ہو رہا ہے, الف لام میم, رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں. اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے. اس روز مسلمان شادمان ہوں گے یعنی خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے, اور اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے, اصل غالب اور مہربان وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. یہ ساتھ آئے تھی بہنوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی یہ خوشخبری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب شرک اور توحید اللہ کی بیان کرتا ہے اور شرک کی مذمت کرتا ہے اور مشرکوں کا انجام بتاتا ہے. اس کا مختصر سا اختصار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں آیت یہ آخر تک یعنی سورہ کے آخر تک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر سے کہہ رہی ہوں, اپنی توحید بیان کی اور مشرکوں کے بارے میں, شرک کے بارے میں کہا اور اس کا انجام بتایا اور قیامت اور دیگر آیات آئی ہیں. تو سبحان اللہ, پہلے توحید سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتے ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کیسے اللہ نے پیدا کیا, مقرر وقت تک اس کا ٹھہرنا ہے. پھر سب رب سے ملاقات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا لوگوں کا, اور یہ نہیں دیکھتے کہ زمین جو بوتی ہے اور وہ کیسے جو ہے نا مطلب پہلے غیر آباد تھی اور کیسے اللہ نے اسے آباد کر دیا زمین کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نشانیوں کو کفار جھٹلاتے ہیں, اسے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جیسے اس نے ابتدا میں پیدا کیا دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا, سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمائے, نوٹ کریے کہ بس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو. کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 17, اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو اور جب تم صبح کرو. تمام تعریفوں کے لائق زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے. تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی کی بیان کرو. وہی زندہ کو مردہ کرتا ہے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہاں پر اوقات بتائے گئے, اوقات بتائے گئے اور آگے بتایا گیا کہ اوقات تسبیح بتائی گئی, کیا کیا وقت میں آپ جو ہے نا اللہ کو ذکر کرنا ہے. تو یہ اسے بعض مفسرین نماز کے اوقات لیے ہیں. آگے بہنوں ایک اور اہم اللہ کی بات کی طرف میں بتاؤں آپ کو کہ آیت نمبر 21, آیت نمبر 21 ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس نصیحت ہے. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری جن سے ہم نے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. کیا ہے مقصد؟ جوڑے بنانے کا آرام. اس سے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. اور واقعی میں ہم اگر کپلز ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تمہارے درمیان میں نے محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یہ بات ہم کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی. اکثر کو نعوذ باللہ, یعنی کئی تو ہیں الحمدللہ جو بہت ہی خوشی سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, لیکن کئی ہیں بہنوں جو کمپرومائز نہیں کرتی, صبر نہیں کرتی, یا پھر ایسے مرد بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کو نہیں چاہتی. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ درمیان اللہ محبت پیدا کرتا ہے, ہمدردی محبت دو بھی اللہ ڈالتا ہے, اور یہ بیویاں آرام کا ذریعہ. زندگی بھر بندے اکثر میں دیکھیے ایک یہ میں اپنا یعنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں, کئی لوگوں کو میں نے دیکھا زندگی بھر یعنی کٹ 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 کے ساتھ گزرتی ہے. لاسٹ میں سمجھ میں آتا, یہ بولتے کہ نہیں بھائی انوچ سب کچھ ہے ہمارے, اب کیا فائدہ. لاسٹ میں جب بوڑھے ہو جاتے اس وقت بولتے کہ نہیں نہیں بھائی ان کے بغیر میں نہیں, میں نے میرے بغیر یہ نہیں. ابھی سے بولیں یعنی سبحان اللہ, جب رشتہ قائم ہوا جب ہی سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری بیویاں تمہارے جوڑے آرام کے لیے اللہ نے بنایا اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر اللہ نے ڈال دی. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے. آج فیملیز کا تباہ ہونے کا ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے کہ بندہ ڈھونڈ نہیں رہا ہے اس میں کہ کہاں اس کی یعنی اللہ نے جو محبت اور ہمدردی قائم کر دی نا, تو اس کو ڈھونڈ کے نکالنا ہے بہنوں, ڈھونڈ کے نکالنا ہے کہ کیسے ذریعے سے ہم محبت پائیں گے اور کیسی ہمدردی دونوں میں قائم رہے گی. بہن اللہ تعالیٰ بہت ہی پیاری یعنی باتیں سمجھاتا ہے اپنی طرف سے, ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی کئی نشانیاں ہیں جن پر تمہیں غور و فکر کرنا ہے. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش, تمہارے زبانوں اور رنگتوں میں اختلاف, یعنی ایک ہی دنیا لیکن مختلف زبان, مختلف رنگ, مختلف چہرے. اللہ تعالیٰ بولے دانش مندوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں, رات اور دن کی نیند میں اور اس کے فضل میں, اس کے روزی بندے کا روزی تلاش کرنے میں, और यानी ऐसी कई निशानी अल्लाह ताला बता रही कि जैसे तुम नाउमीद हो जाते हो, बारिश नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला फिर कैसे उम्मीद तुम्हें दिलाता है और तुम्हें डराता भी है बिजलियां दिखाकर, और उम्मीद भी बांधता है, बारिश भी बरसाता है, जिंदा मुर्दा जमीन को जिंदा भी करता है, आसमान और जमीन उसी के हुक्म से कायम है, फिर तुम्हें वो एक आवाज देगा और सबको सब तुमको पलट कर उसी की तरफ, यानी सब दौड़ कर जमीन से निकल कर मेरी तरफ आओगे, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। और जमीन के हर हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हान व तआला, वही जिसने अव्वल पैदा किया, आखिर भी पैदा करेगा, दोबारा पैदा करेगा, और उसके लिए सब आसान है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम में एक बेहतरीन मिसाल यहाँ बयान की गई, देखिए आयत नंबर 28 में, इसको भी नोट करिए, कैसे प्यारी प्यारी मिसाल है ना, अल्लाह ताला कितना यानी खोल खोल कर मिसाल बयान करता है। क्या फरमा अल्लाह ताला कि एक मिसाल खुद तुम्हारे ही अंदर बयान फरमाई अल्लाह ने, कि जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है क्या इसमें तुम्हारे गुलामों में से भी तुम्हारा कोई शरीक है कि तुम इस कि वो इसमें दर्जे में बराबर हो जाए। मतलब क्या है, मतलब क्या है, आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि जब तुम ये पसंद नहीं करते, उसकी तफसीर क्या है, जब तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारा गुलाम और नौकर चाकर जो तुम्हारे ही जैसा इंसान है वो तुम्हारे मालो दौलत में शरीक नहीं हो और तुम्हारे बराबर ना हो जाए, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के बंदे, चाहे वो फरिश्ते हों या पैगंबर हों या औलिया हों या फिर कोई भी हों, या शजर हिजर दरख्त, कोई भी जिसको भी बंदा माबूद बना ले रहा ना, तो अल्लाह ताला बता रही फिर तुम कैसे तस्वुर कर रहे हैं अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह के बराबर ये हो जाएंगे उसके गुलाम उसके बंदे। अल्लाह अकबर, कैसी मिसाल दे रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला बंदों को बोल रही, तुम नहीं चाहते ना भाई, अगेन मैं समझा रही हूँ, देखिए बंदों को बोल रहे हैं अल्लाह ताला, तुम ये नहीं चाहते ना भाई कि तुम कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे बराबर हो जाएं या तुम्हें उनमें कोई फर्क ना रहे, बराबर के दर्जा हो जाए, तुम ये नहीं चाहते ना, तो फिर अल्लाह कैसे चाहेगा, अल्लाह के लिए कैसा बना दे रहे, अल्लाह के गुलामों को उसके बराबर कैसे बना दे रहे ना उस, और तुम इनका ऐसा खतरा रखते हो जैसे खुद अपनों का, यानी गुलाम होते हैं तो उनसे कैसा खतरा होता ना कि मतलब अरे कौन बराबर दर्जे के हो जाते, तो नऊज बिल्ला अल्लाह ताला बता रहे हैं हम अखल रखने वालों के लिए इसी तरह खोल खोल कर आयतें बयान करते हैं, बल्कि ये बात है कि ये जालिम तो बगैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं। लिहाजा हुक्म हो रहा है आयत नंबर 31 में, 30-31 ये भी नोट करिए, इसमें अल्लाह ताला बता रहा है अकीम वजहका लिद्दीन हनीफा, क्या बता रहे हैं, तुम झुक जाओ, कैसे तुम खायम हो जाओ, किस तरीके से मुतवज्जा हो जाओ, अपना रुख कर लो दीन की तरफ खालिसतन, फअकीम वजहका लिद्दीन हनीफा, एक सू होकर तुम अपना मुंह इस दीन की तरफ कर लो। आगे फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, ये भी बहुत अहम बात है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया, याद रखिए, फिर दोहरा रही हूं तर्जुमे को, अल्लाह की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पर बंदों को पैदा किया। आज से याद रखिए, कोई ये नहीं कहेगी कि अरे बहुत अलीस फितरत की है उन्होंने, ऐसा बोलते थे ना, नौज अस्तग़फ़िरुल्लाह, कभी नहीं बोले बहनों, कभी नहीं बोले, फितरत गलीज नहीं होती, फितरत अल्लाह ताला बता रहे मैंने अपनी फितरत पर लोगों को पैदा किया, अल्लाह ने अपनी फितरत पर पैदा किया, बंदे उसको जो है ना आदतों को बिगाड़ते हैं, आप ये कह सकती हैं बड़ी खराब आदत है इनकी, आदत कहें, फितरत हरगिज भी नहीं कहें, अस्तग़फ़ार करें। देखिए आज हमने पढ़ा अल्लाह की वो फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह ने अपनी फितरत पर लोगों को पैदा किया, तो किसी की फितरत को गाली ना देना, उस बिल्ला अल्लाह अपनी फितरत पर बंदों को पैदा करता है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है अल्लाह के बनाए हुए बनाए को बदलना मुमकिन नहीं, यही सीधा दीन है, अल्लाह ने फितरत के हिसाब से दीन रखा बहनों हमारा, और यही फितरत के हिसाब से हमारा दीन रखा गया, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, अल्लाह ने अपनी फितरत के हिसाब से, ये जो दीन है हमारा, हमारे दीन हमारी फितरत के हिसाब से है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं अक्सर लोग समझते नहीं, लोगों उस अल्लाह की तरफ रुजू होकर उससे डरते रहो, नमाज को कायम करो, मुशरिकों में से ना हो जाओ। और एक भी पॉइंट यहाँ पर 31 में, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज को कायम नहीं करता, उसकी पाबंदी नहीं करता, उससे निकल भागता है, छोड़ पकड़ करता है, तो अल्लाह ताला बता रही तुम नमाज अल्लाह से डरो, नमाज को कायम रखो और मुशरिकों में से मत हो जाओ, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ नहीं छुपता उसको अल्लाह मुशरिक बोल रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने वाला मुशरिक, नमाज छोड़ पकड़ करने वाला मुशरिक बोल रहे हैं अल्लाह ताला। इन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और खुद भी गिरोह गिरोह हो गए, हर गिरोह उस चीज पर जो उसके पास है मगन है, फिर बोले दिखे अल्लाह ताला इसमें आयत नंबर 32 में, यानी जो भी उसके पास है उसके ऊपर मगन है, उन्हें बोल रहा है मैं सही हूँ। अब देखिए, अब ये बात अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नमाज को कायम नहीं करता बंदा, तब छोड़ पकड़ कायम करना मतलब ये कि उसको पाबंदी के साथ मजबूती के साथ जम जाना उसके ऊपर, वो नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो मुशरिकों में से हो गया। अब उन्हें बोलता कि हाँ मैं कहा शिर्क, मेरे पास बुतिच नहीं है। अब फिर अगेन वही बुत आ गई जो अंदर बैठा हुआ है, नफ्स का बुत। पहले कहे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर वो चीज जो उसके पास है वो अपना गिरोह टुकड़े टुकड़े कर लिया, अपना अपना बना लिया दायरा और उसमें मगन बैठा है। अल्लाह महफ़ज़ना, अल्लाह हमें महफूज रखे ऐसे धोखे से। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम उसकी यानी उस रब की तरफ हम पलटे जो रुजू होकर अल्लाह से दुआएं मांगे, और जब अल्लाह ताला हमको इंशाल्लाह हिदायत देगा तो अल्लाह ताला की हिदायत सब में बड़ी चीज है, और हम अपने दीन के टुकड़े टुकड़े नहीं कर लें, अपने गिरोह में मस्त होके नहीं बैठे, बल्कि देखें अगर कहीं खां खुदा ना खास्ता गलत है तो फौरी अपने आप को करेक्ट कर लें इंशाल्लाह। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है लोगों को जब कभी कोई मुसीबत पहुंचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रुजू होकर दुआएं करते हैं, फिर जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से मजा चकाता है रहमत का तो उनमें से एक जमात अपने रब के साथ शिर्क करने लगती है नऊज़ बिल्लाह, ताकि वो उस चीज की नाशुकरी करें जो हमने उन्हें दी थी। अच्छा तुम फायदा उठा लो, अल्लाह ताला बोले अच्छा तुम फायदा उठा लो, अभी भी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे, जिसे चाहे अल्लाह कुशादा रिस्क देता है, जिसे चाहे तंग करता है, उसमें भी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं निशानियां हैं। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप खराबतदार को दो, मिस्कीन को दो, यानी अल्लाह ने आपको जो रोजी दी है उसमें से जो रिस्क दिया है फरागत करी है आपके ऊपर, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फरागत करना भी रोकना भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, लिहाजा खराबतदार को दो, मिस्कीन को दो, मुसाफिर को दो, यानी रिश्तेदारों को, मसाकिन को, मुसाफिरों को दो, हर एक का हक है, यानी हर एक का हक है, उसको उसका हक दीजिए। उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा, यानी ये किसके लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा देखना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, वो कब दिखेगा, कब देखेंगे अल्लाह ताला को इंशाल्लाह जन्नत में। तो ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला बता रही अल्लाह जन्नत देगा इंशाल्लाह। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही ऐसे ही लोग नजात पाने वाले हैं, तुम जो सूद पर देते हो, यानी ऐसे लोग नजात पाने वाले हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब ऐसे लोग हैं जो कंजूस हैं, नहीं देते अल्लाह की राह में, सूद खाते हैं। तुम ऐसे जो सूद देते हो लोगों के माल में, वो यानी ऐसा नजर आता है कि वो बढ़ता है, और अल्लाह ताला बता रही कि सदखा दो, तुम जो सूद पर देते हो लोगों के माल में बढ़ता है वो अल्लाह के हाँ नहीं बढ़ता, और जो तुम सदखा जकात तुम दोगे अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, तो ऐसे लोग ही हैं अपना माल दो चंद करने वाले, यानी ऐसे लोगों का ही माल अल्लाह ताला बढ़ाएगा, ऐसे लोगों का माल अल्लाह ताला बढ़ाएगा जो सदकात देते हैं। देखने में तो बहनों ऐसा लगता है कि सूद जो बंदा देता है उसका माल बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये अल्लाह के पास नहीं बढ़ता, उसको बरकत नहीं है, लानत है उसके ऊपर, और जो अल्लाह की राह में जकात देगा उसका माल बढ़ेगा। बज़ाहिर किसी को दिखता, किसी को दिखाई नहीं देता बढ़ता हुआ, लेकिन अल्लाह का वादा बरहक है। आगे अल्लाह ताला फरमा रही कि तुम देखो खुशकी और तरी में लोगों की बदामालियों की वजह से फसाद फैला है। ये भी आयत नोट करिए, आयत नंबर 41, कि जमीन में फसाद कब फैलता है, लोगों के अपने अमाल की वजह से, खुशकी और तरी में लोगों के बदामालियों की वजह से फसाद फैल गया, इसलिए कि इन्हें इनके बास करतूतों का फल अल्लाह इनको चका दे, बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाएं। अल्लाह अकबर, कह दीजिए कि जमीन में चल फिर कर देखो कैसे पहले लोगों का कैसा अंजाम हुआ है जो मुशरिक थे। लिहाजा आप अपना रुख उस सच्चे और मजबूत दीन की तरफ फेर लीजिए, और जो यानी आप अपना रुख उस सच्चे और सीधे दीन की तरफ ही रखें, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टल जाना अल्लाह की तरफ से है ही नहीं, उस दिन सब मुतफर्रिक हो जाएंगे। कुफ्र करने वालों का बवाल उन पर होगा, नेक काम जो करेंगे वो आरामदार रहेंगे, अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे जजा देता है, और जो नेक अमाल की अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जजा देगा, और वो काफिर को दोस्त नहीं रखते, अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो निशानियां अल्लाह ताला की बताई गई कि अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा और दलीलें लेकर आए, वो गुनाहगारों से अल्लाह ने इंतकाम लिया और मोमिनों की मदद की अल्लाह ने, और अल्लाह ही है जो हवाएं चलाता है, अबर को उठाती फिरती हैं वो, और अल्लाह के मंशा के मुताबिक जहां जहां अल्लाह फैला देता है बादलों को और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फिर आप देखते हैं कि इसके अंदर से खतरे खतरे निकलते हैं, सुभान अल्लाह, बारिश जो अल्लाह ताला बरसाता है बहनों, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं खतरे खतरे करके तुम पर बरसाता हूँ। ऐसा नहीं कि बादल फटे, नौज़ बिल्लाह ऐसा भी कर सकते हैं अल्लाह ताला, जहाँ बादल पानी की जरूरत भर डाल दिए, तो नौज बिल्ला फायदेमंद नहीं होती थी वो बारिश। अल्लाह कैसे सब्र के साथ खतरे खतरे जमीन पर भेजता है, ये भी उसके सब्र का एक निशानी है सुभान अल्लाह। कि कैसे अल्लाह ताला खतरे खतरों की शक्ल में बता रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर आयत नंबर 48 में, कैसे में खतरे खतरे करके जमीन पर बारिश नाजिल करता, जिसे अल्लाह चाहता है उन बंदों पर वो पानी बरसाता है तो वो खुश खुश हो जाते हैं। यकीन मानना, मानना कि बारिश इन पर बरसने से पहले पहले तो वह नाउम्मीद हो रहे थे, बस अल्लाह ने अपने रहमत इलाही के आसार दिखाए उनको, और जमीन की मौत के बाद अल्लाह ताला ने जमीन को जिंदा कर दिया। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को भी जिंदा करने वाला, हर वो चीज पर वो खादिर है। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब तेज उतुंद आंधी चलती है और उनकी खेतियां मुरझाई हुई जर्द पड़ जाती हैं तो ये नाशुकरी करने लगते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी आवाज सुना सकते हैं, ना मुर्दों को सुना सकते, ना बहरों को, ना वो जो पीठ फेर कर मुड़ कर भाग रहे हैं उनको भी नहीं सुना सकते, ना अंधों को हिदायत दे सकते हैं। बल्कि ईमान कौन रखेगा? वही जो इताअत करने वाला है, फरमाबरदारी करने वाला है। वो अल्लाह है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया, फिर इस कमजोरी के बाद तुम्हें तवानाई दी। सुभान अल्लाह, है ना, बच्चा कमजोर पैदा होता है फिर अल्लाह तवाना करता है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसे साइकिल देखिए कैसी है, फिर कमजोरी और बुढ़ापे में ला देता है। जो चाहे वो पैदा करता है, अल्लाह हर चीज से पूरा पूरा वाकिफ है, पूरा पूरा कादिर है। जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार लोग खस्में खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा अल्लाह नहीं ठहरे। पिछले भी हम पढ़े थे, अल्लाह ताला बार बार दोहरा रहा है इस बात को कि कुफार लोग अल्लाह के सामने कसम खा के बोलेंगे, अल्लाह हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एक घड़ी, एक घड़ी किसको बोलते हैं ना, सेकंड, एक सा, एक घंटा, एक मिनट, बस उतना ही ठहर के आए बोलेंगे दुनिया में, नऊज बिल्ला। इसी तरह ये बहके हुए रहेंगे बोले अल्लाह ताला। और जिनको इल्म दिया गया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बता रहे हैं इल्म और ईमान, अल्लाहुम्मा आतिना, अल्लाह हम सबको अता करे या रब। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया वो जवाब देंगे कि ए अल्लाह, कितना ठहरे पूछिए ना अल्लाह ताला, तो ये इल्म और ईमान वाले जवाब देंगे कि तुम यानी जैसा कि अल्लाह किताब अल्लाह में जो लिखा है, यौम क़यामत तक हम ठहरे रहे, ऐसे बोलेंगे। आज का ये दिन क़यामत ही है, लेकिन तुम यकीन ही नहीं करते, अल्लाह ताला काफिरों को बोलेंगे तुम तो यकीन ही नहीं करते थे, बस इस दिन जालिमों की उज्र व माजरत कुछ काम नहीं आएगी। माजरत चाहना तो आज ही चाहना है, वहां पे जाके नो एक्सक्यूजेस, यहाँ जो एक्सक्यूजेस कर लेना ना अपने अमाल के लिए कि फला फला फला, नहीं, अल्लाह ताला बता रहे एक वक्त आएगा नो एक्सक्यूजेस, कोई उज्र माजरत काम नहीं आएगी। यहाँ पे तो बड़े आसानी से मतलब अपने आप को धोखा दे ले रहे, लेकिन वहां पे कोई उज्र माजरत काम नहीं आएगी और ना उनसे तौबा तलब की जाएगी। बेशक हमने इस कुरान को लोगों के सामने कुल मिसालें बयान कर दी, तमाम की तमाम मिसालें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला। आप इनके पास कोई भी निशानी लाएं, ये काफिर तो यही कहेंगे तुम बिल्कुल छूटे हो। अल्लाह इन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते यूं ही मुहर लगा देता है। बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, आपको वो लोग हल्का बेसब्रा ना पाएं जो यकीन रखते हैं। आप वो लोग आपको वो लोग हल्का ना करें जो यकीन नहीं रखते, यानी कुफार शदीद बंदे को हिलाने की कोशिश करता मोमिन बंदे को, लेकिन मोमिन बंदे का अल्लाह ताला ये शान बता रहे हैं कि वो सब्र के साथ जमा रहता है, और जो कुफार हैं उसको हार हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो हार अपनी आंखों से देखेगा, और वो वक्त जब आएगा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो वक्त हमको अल्लाह बचा ले, और जो गुनाह हमसे सरजद हो रहे हैं या रब उससे हमें महफूज कर ले, उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह के कलाम को जो अल्लाह बता रहा है कि कुरान में लोगों के सामने कुल मिसालें अल्लाह ने बयान कर दी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उन मिसालों को समझने वाला बनाए, और अल्लाह की बातों को समझ कर उस पर अमल करने वाला और दूसरों तक हमें पहुँचाने वाला बनाए। आमीन या रब। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम। आमीन या रब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
सूरह रूम खत्म हो गया ना भाजी?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह रूम खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह।